ऑस्ट्रेलिया में सेंसिस का डेटा है उसके ऊपर तजिये जारी हैं और बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस सेंसिस या मर्दमशुमारी के डेटा का मतलब क्या है। जो उर्दू बोलने वालों की तादाद इस सेंसिस में सामने आई है 2016 की मर्दमशुमारी में वो तकरीबन 70,000 के करीब है, जबकि सन 2011 में ये तादाद 36,000 के करीब थी। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तानी शायद या उर्दू कम्युनिटी खुशी महसूस करे कि उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, मगर साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी में भी ये डेटा बहुत कारामद रहता है। इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर फरहत साहब और हम उनसे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर फरहत यूसुफ साहब, मैं आपको SBS रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर इस ठंडी ठंडी शाम में खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पर।
शुक्रिया अलवी साहब।
फरहत यूसुफ साहब, जैसा कि हमने बात की कि मर्दमशुमारी या सेंसस 2016 का डेटा रिलीज हो चुका है, क्या ऐसी ख़ास बात है जो इस सेंसस डेटा के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम है, ज़रा उसका जिक्र कीजिएगा। अगर मैं शुरू के टॉप तीन डेटा की कोई ख़ास बात करूं तो क्या आप बताना चाहेंगे?
जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का सवाल है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि उर्दू बोलने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो मुसलमानों की है। 96% मेजॉरिटी उर्दू बोलने वाले जो हैं वो मुसलमान हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे जो लोग आए हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और उनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है और जॉब्स हैं,
तालीम
याफ्ता लोग। जी हाँ हैं। तो
अच्छा, आपने मज़हब की बात की, एक ऑस्ट्रेलिया में जाहिर है मज़हब के हवाले से एक रिजेंटमेंट भी पाया जाता है आजकल जिस तरीके की यहाँ माहौल है उसके हिसाब से, तो ये पाकिस्तानी जो जिनकी तादाद बहुत नुमायाँ तौर के ऊपर बढ़ी है, ख़ास तौर पे जो डेटा मैं देख रहा था तकरीबन 2015 में काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और दूसरे भी हैं, लेकिन उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो इसमें तादाद अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन वैसे इमिग्रेशन वाइज लोग आए हैं। तो जो आपने मज़हब की बात की, तो क्या जो बाकी ममालिक इस्लामी ममालिक से आने वाले हैं जैसे इराक़ है या शाम है और लबनान है, क्या इन लोगों के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद, पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद इनके मुकाबले में बढ़ी है?
जी हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कंप्यूटर पे सेंसस के कंप्लीट डेटा सेट को देखा, तो आपको सुन के ये हैरत होगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुसलमानों को लें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन बॉर्न लोगों का है। ये वो लोग हैं जो कि हमारे बच्चे या हमारे सेकंड या थर्ड जनरेशन के लोग हैं, लेकिन उसके बाद ओवरसीज बॉर्न मुसलमानों में पाकिस्तानी मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 10 में से एक मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था जो यहाँ पर रहता है।
यानी एक ये नई सिर्फ ये
बिल्कुल नई है,
2011 के सेंसस में कहीं दूर दूर पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आते थे मुसलमानों में।
बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आज से 20 साल पहले एक पेपर लिखा था मुसलमानों के बारे में। उस जमाने में सबसे ज्यादा मुसलमान तुर्की के थे, उसके बाद लेबनान के थे, और पाकिस्तानी वगैरह का तो कोई पता ही नहीं था। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो ओवरसीज बॉर्न जो मुसलमान हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो उनमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद अफगान हैं, फिर लेबनीज हैं, फिर बांग्लादेशी हैं, एंड सो ऑन।
तो मैंने जो बात की थी कि सियासी तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सूरत हाल है, क्या इसका कोई असर, क्योंकि जब मुसलमानों की बात आती है और इसमें अगर पाकिस्तानी ज़्यादा हैं इन मुसलमानों में, तो क्या उर्दू कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको ज़्यादा महसूस कर सकती है या उस पर ज़्यादा असर इसका मुरतब हो सकता है जब सियासी हवा इस तरह की चली हो जिसमें माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो या उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही हों, तो क्या इसके लिए कुछ कम्युनिटी को कुछ अपने तौर पर तैयारी की ज़रूरत हो सकती है?
देखिए, मेरे ख़्याल में हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप उन इलाकों में जाएं जहाँ पे के मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको हमारी तरफ के लोग जो होंगे, ख़वातीन का लिबास या मर्दों का लिबास, उससे देख के आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मुसलमान हैं या कौन हैं।
यानी पाकिस्तानी आम तौर पे ऑस्ट्रेलियन मेन स्ट्रीम में घुले मिले हुए हैं, और किसी एक जगह कंसंट्रेटेड जहां मुसलमान है वहीं ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी भी मौजूद।
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है जी हाँ। फिर ये कि चूँकि तालीम की वजह से हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल में है, काम करते हैं।
यानी आइडेंटिटी जो पाकिस्तानियों की ज़रा शनाख्त यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर कायम हुई है, वो आम तौर पर प्रोफेशनल्स के तौर पे उनको जाना जाता है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, इस तरह की। तो उसका आपके ख्याल में बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कम्युनिटी के ऊपर कि वो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एक तरह से मुतासिर करने में कामयाब हो सकती हैं, यानी हुकूमत उनको इस्तेमाल कर सकती है ऐसी कम्युनिटी को जो एक पॉजिटिव इमेज रखती है दूसरे मुसलमान कम्युनिटीज़ को भी इंगेज करने में। क्या ऐसा मुमकिन है?
ऐसा यकीनन मुमकिन है, क्योंकि यहाँ ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें के वो इतने ज़्यादा अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलहदा रखते हैं कि जिसकी वजह से फिर उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के ख़यालात लोग एक्सप्रेस करते हैं कि भई ये तो हमें मिलते ही नहीं है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो काफ़ी मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन के साथ घुल मिल जाते हैं।
एक और डेटा जो आपने रिट्रीव किया है वो ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ रियासतों में पाकिस्तानियों की तादाद के हवाले से, ज़रा वो कुछ हमारे सामने शेयर करेंगे।
उर्दू बोलने वाले, ये उर्दू बोलने वालों की, और ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले और पाकिस्तानी तकरीबन एक ही चीज़ हैं,
क्योंकि उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी तादाद कितनी परसेंट तादाद है? तकरीबन 96%
70,000 हैं तकरीबन उर्दू बोलने वाले, और उनमें से 96% जो है वो मुसलमान हैं।
ठीक।
और अगर आप पाकिस्तानी देखें तो तकरीबन 2/3 पाकिस्तानी हैं, कोई तकरीबन 20%।
जब हम 2/3 कहते हैं यानी 75% के से ज़्यादा जो उर्दू बोलने वाले
नहीं, वो 3/4। अच्छा। ये 2/3 का मतलब है तकरीबन 64% 64%
लोग जो उर्दू कम्युनिटी के हैं उनका
वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिर तकरीबन 20% वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन है। और 10% इंडिया,
यानी सेंसस के फॉर्म में 10% ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने उर्दू को अपनी जबान लिखा है कि वो उर्दू जबान बोलते हैं।
वो इस तरीके से कि जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए थे तो उस जमाने में तो पाकिस्तान था ही नहीं,
राइट,
तो इसलिए उनकी उनका कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, लेकिन उन्होंने उर्दू लिखाई थी।
लेकिन बहुत सी जो हिंदुस्तानी यहाँ माइग्रेट होके आए और जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है, वो अपने घरों में उर्दू बोलते हैं, तो उनके यहाँ भी मेरे ख्याल में डेटा में
बहुत मुमकिन है कि डेटा जो होगा उन्होंने उर्दू किया होगा। तो ये मैं कह रहा था कि न्यू साउथ वेल्स में उर्दू बोलने वालों की के जो परसेंटेज है 43% है, विक्टोरिया में 33%, तीसरे नंबर पर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ 8% हैं, क्वींसलैंड में 7, साउथ ऑस्ट्रेलिया और एसीटी में तकरीबन बराबर हैं 3-4% के करीब, और तस्मीनिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में 2% के करीब है। ज्यादा लोग
जी, जी। और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की डेमोग्राफी है और जिस तरह का जिसे हम कहते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिटीज हैं वही आबादी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन, तो इनकी आबादी यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में मेरे ख्याल में क्योंकि रोजगार के मौके भी ज्यादा हैं, इसलिए जिस तरह का एक आम ट्रेंड रहा है कि आमतौर पर माइग्रेंट्स यहीं पर आते हैं, तो बाकी कम्युनिटी का भी मेरे ख्याल में इसी तरह का रेशो होगा कि उनकी ज्यादातर तादाद न्यू साउथ वेल्स में होगी।
नहीं, नॉट जरूरी नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर जो ग्रीक्स हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो विक्टोरिया में ज्यादा है। बल्कि कहा जाता है कि ग्रीस के बाद के बाहर सबसे बड़ा जो ग्रीक सिटी है वो मेलबर्न।
ठीक,
तो ये मुख्तलिफ
है थोड़ा इस लिहाज से। तो बहरहाल न्यू साउथ वेल्स में अभी भी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, मगर मुलाजमत के मौाक़े विक्टोरिया में भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ भी बहुत लोग मूव होते हैं और वहाँ भी रहते हैं। और आपने जैसा कि बताया कि उर्दू माइग्रेंट की बड़ी तादाद 2015 में ऑस्ट्रेलिया आई है, तो कम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो, उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए।
जी ज़रूर, हमारी कम्यूनिटी में दो एज वाइज दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं देखने की। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो 30 से 34 की एज ग्रुप के लोग हैं,
यानी नौजवान सबसे ज़्यादा हैं।
नौजवान लोग मैं देख रहा था कि 70 एंड ओवर के लोग जो हैं वो काफ़ी कम हैं, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि उनकी तादाद ही यहाँ पर कम है। क्योंकि जो माइग्रेशन हुई है वो हाल के सालों में,
पिछले 5 सालों में जैसे हम कह सकते हैं, 6 साल।
अगर आप एवरेज एज निकालें यानी तो देखेंगे कि उर्दू बोलने वालों की जो औसत उम्र है वो 28 साल के करीब है, जबकि ऑस्ट्रेलियंस
की कितनी है?
ऑस्ट्रेलिया में औसत उम्र कुछ 34 साल है
और पाकिस्तानियों की 28 साल है, तो थोड़ी सी कम है पाकिस्तानियों
हमारे
की।
ऑब्वियसली कि हमारे लोग जो कि जब आप माइग्रेट करके आते हैं तो यंग लोग ज्यादा माइग्रेट करते हैं, तो इस तरीके से ये।
अच्छा, जो ब्रेकडाउन आपके पास आया है रियासत के तौर पे कि किन किन रियासतों में पाकिस्तानियों या उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, क्या उसमें कुछ आपने खासतौर पर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में सबर्ब वाइज भी कुछ देखा है कि कहाँ कंसंट्रेटेड है ज्यादा उर्दू बोलने वाले?
जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक ऑबर्न में, न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं। हालांकि अगर आप ऑबर्न में जाएं तो वहाँ आपको तुर्की और अरबी जबानें और रेस्टोरेंट बहुत मिलेंगी, लेकिन
जिन्होंने सेंसस में अपने खाने में, जबान के खाने में उर्दू लिखा है, वो ऑबर्न में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा
ऑबर्न में रहते हैं, उसके बाद लकिम्बा में रहते हैं,
लकम्बा का सबर में भी,
और विक्टोरिया में एक सबर है रिजर्वायर। मैं विक्टोरिया से बहुत ज़्यादा मानूस नहीं हूँ, तो मुझे नहीं अंदाज़ा ये रिजर्वायर किस तरफ है, लेकिन यकीनन आपके विक्टोरियन नाज़रीन जो हैं वो इसको समझने में कामयाब होंगे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात उर्दू स्पीकिंग लोगों में ये है कि वो, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको आप ये कहें कि भाई ये उर्दू स्पीकिंग है, जैसे कि अगर आप
अरबियों के इलाके कहे जाते हैं,
अरबियों के, या जैसे मैंने देखा, मैंने इसी किस्म की रिसर्च हिंदी स्पीकिंग लोगों के बारे में भी की। मिसाल के तौर पे पैरामेटा और ब्लैक टाउन जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। यानी अब अगर आप जाएँ हैरिस पार्क
तो
वहाँ आपको लगेगा कि आप इंडिया टाउन में आ गए जी, लेकिन पाकिस्तानियों की ऐसी कोई
एक जगह कंसंट्रेटेड
नहीं है जी।
अच्छा, इसी तरीके से आपने कुछ रिसर्च में इसमें सेंसस के डेटा में आमदनी के हिसाब से भी कुछ डेटा सामने आया है कि पाकिस्तानियों की औसतन आमदनी आम ऑस्ट्रेलियंस के मुकाबले में कितनी है?
काफ़ी कम है। एक तो है ये कि जहाँ तक आमदनी का सवाल है, सेंसस में तकरीबन टोटल जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे उनमें से 15 साल की उम्र से कम के जो थे उनसे तो आमदनी का सवाल पूछा ही नहीं गया, इसलिए आप उनको निकाल दें, और जो रिटायर हो गए हैं उनसे भी नहीं पूछा गया, उनको भी निकाल दें। तो तकरीबन 53% लोग थे जो कि वर्किंग एज के थे और उन्होंने अपनी आमदनी रिपोर्ट की, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में खाने को 15-20% तक लोग थे जिन्होंने अपनी आमदनी बताई नहीं, और ये ऑस्ट्रेलिया में ये काफ़ी ये होता है कि लोग अपनी आमदनी नहीं बताते
हैं। ये बात
तो जिन्होंने आमदनी बताई उनकी आमदनी की औसत $250 पर वीक थी, और ये मोस्टली मर्द थे क्योंकि हमारे की और ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा
फाल नहीं है माशरे में काम करने के लिहाज से, यानी जॉब का रेशो ख़वातीन में कम है।
बिल्कुल, लेकिन ये फिगर्स जो हैं ये डेफिनेटली अंडर एस्टिमेट हैं, क्योंकि अगर आप किसी से उसकी आमदनी पूछें तो हम तो अभी लोग सही नहीं बताते।
ऑस्ट्रेलिया में एवरेज औसतन हफ्तेवार आमदनी कितनी है?
ऑस्ट्रेलिया में हफ्तेवार आमदनी तकरीबन कोई इससे दुगनी,
यानी $500 पर वीक करीब हो सकती लगभग, जबकि पाकिस्तानियों की औसतन आमदनी $250 पर
वीक। उसकी वजह ये है
कि खवातीन इसमें शामिल हैं,
एक तो खवातीन
की कोई आमदनी,
दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग प्रोफेशनल लोग भी जो यहाँ आते हैं उनकी प्रोफेशंस को यहाँ पे नहीं
रिकॉग्नाइज
किया जाता, इस वजह से
एक्रेडिटेशन के इश्यूज होते हैं उनको,
इस वजह से वो जॉब्स जाहिर है कि लो पेइंग जॉब्स उनको करने पड़ते हैं,
यानी जिस प्रोफेशन से वो बाकायदा तरबियत लेके आए होते हैं उसी प्रोफेशन में उसी लाइन में उनकी जॉब नहीं मिलती।
मिल जाती है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मिलती,
जरूरी नहीं कि उसी में मिल जाए उनको। तालीमी लिहाज से आप बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानियों की औसतन तालीम यहाँ कितनी पाई गई है, यानी उर्दू बोलने वालों की?
पाकिस्तानियों में तालीम जो है तकरीबन 90% लोग 15 and over, क्योंकि वो हैं उन्होंने 12वीं जमात या इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा तालीम की है, जो कि ये
औसत ऑस्ट्रेलियन के मुकाबले में काफी
के मुकाबले में ज्यादा है, ये ज्यादा है जी।
इसके बावजूद के ये डेटा पूरे तमाम उर्दू बोलने वालों का है और उनमें खवातीन भी शामिल है, इसका मतलब जो खवातीन आई हैं वो भी पढ़ी लिखी खवातीन आई हैं, हालांकि वो जॉब नहीं कर रही हैं, रेशो कम है जरा खवातीन में जॉब्स का, लेकिन पढ़ाई लिखाई और तालीमी मैदान में पाकिस्तानियों के हालात काफी बेहतर।
बल्कि अगर इसको और डिटेल में जाएं, अभी मुझे मौका नहीं था जाने का, लेकिन मैं आपको मिसाल दूं कि कोई 5 साल पहले एक अमेरिकन कंसल्टिंग कंपनी है जिसने मुझे कहा था कि वो कनाडा के मुसलमानों के ऊपर रिसर्च करें, उसमें मैंने ये देखा कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड जो प्रोपोर्शन था यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का कनाडा में मुसलमानों का, वो जो उनकी जो नेशनल एवरेज है उससे 3 गुना था। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में भी इसी किस्म की फिगर्स होंगी, लेकिन अभी जो सेंसस ने जो फिगर्स रिलीज़ की हैं वो खाली 12वीं जमात या उससे ज़्यादा को मिला के एक ग्रुप उन्होंने बना के दिया।
अच्छा, ये जो जब हम तालीमी सलाहियत की बात करते हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल इशारा भी किया कि लोग तालीम हासिल करके यहाँ आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी वो डिग्री या उनका प्रोफेशन को यहाँ फुल्ली 100% रिकोगनाइज कर लिया जाए, तो इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से तालीम याफ्ता होते हैं, और वो भी शामिल हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन हासिल की होती है, उसके बाद यहाँ PR लेते हैं, यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान से तालीम हासिल करने वालों में और ऑस्ट्रेलिया की तालीम हासिल करने वालों में, दोनों में अंग्रेजी की सलाहियतों का भी फर्क हो सकता है, तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों की अंग्रेजी की सलाहियत कैसी है?
पाकिस्तानियों की अंग्रेजी की सलाहियत के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि तकरीबन 2/3 पाकिस्तानियों ने रिपोर्ट किया कि उनको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलनी आती है,
यानी तकरीबन जो मेरे पास फिगर है 66.2% लोग वेरी वेल अंग्रेज़ी बोलते हैं,
और 25% ने कहा कि हम अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं, और 8% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम अच्छी नहीं बोल सकते या हम बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान का कोई मसला नहीं है, जबकि और जो जो माइग्रेंट्स हैं, कुछ और माइग्रेंट्स, उनके यहाँ ये काफ़ी काफ़ी बड़ा मसला है।
तो मेरे ख्याल में हम अगर मुस्तकबिल के हिसाब से देखें तो उर्दू कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस लिहाज से काफ़ी ब्लेस्ड है कि वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, अंग्रेज़ी का उनके यहाँ मेयार अच्छा है और प्रोफेशनल्स हैं इनके यहाँ। तो इस लिहाज से सोशल इशूज़ के बारे में अगर कोई निशानदेही के कोई बैरोमीटर्स हैं या इशारे हैं तो वो उर्दू कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप कैसे देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक सोशल इश्यूज़ का सवाल है,
इसमें शायद मज़हब का भी कुछ अंसर आ जाता हो।
बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है,
ताल्लुक है।
लेकिन सोशल इश्यूज़ के ऊपर सेंसस में कोई इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल में नहीं है।
मिसाल के तौर पे सिर्फ इंडिकेटर्स हो सकते हैं।
मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके बारे में सेंसस में कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सर्वेज ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है, और लेकिन उन सर्वेज में जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में तो डेटा मिल जाता है, लेकिन जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मेरे ख़्याल में मैं देखूंगा, इस वक्त मैं मेरे पास नहीं है कि मुसलमानों में डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और कम्युनिटीज़ के मुकाबले में, वो मुमकिन है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फरहत यूसुफ साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इन आदाद व शुमार का हमारे साथ बैठ के जायज़ा लिया, और हमारे सामईन को भी यकीनन बड़ी अच्छी मालूमात इससे हासिल हुई होगी। और आपका हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे सामईन से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया
सामईन, ये अभी आप हमारे साथ प्रोफेसर फरहत यूसुफ साहब की गुफ्तगु सुन रहे थे ऑस्ट्रेलिया के मर्दमशुमारी के हवाले से। और आप लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि प्रोग्राम में मौसीकी का तड़का बहुत कम होता है, और यकीनन ये मौसीकी का प्रोग्राम नहीं है, मगर थोड़े से कुछ दो तीन मिनट बाकी हैं, चलते चलते आपको एक भूले बिसरे गीत की तरफ हम ले जाते हैं। और इसी गीत को आप सुनिए, इंजॉय कीजिए, और अपने मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे घर खुदा लाया, अल्लाह निगेबान।